नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम जापान की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री की ये 8वीं जापान यात्रा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ ये उनकी पहली शिखर बैठक होगी। इस बीच जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। एक रिपोर्ट।
जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने कहा कि विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध द्विपक्षीय के साथ ही बहुपक्षीय भी है।
वेरी फ्यू कंट्रीज हैव वी रिलेशनशिप वी कॉल इट स्पेशल बट वी कॉल इट बिटवीन इंडिया एंड जापान इट इज अ पार्टनरशिप इट इज स्ट्रेटजिक एंड व्हाट इज सो इट इज ग्लोबल इट हैज बोथ बायलैटरल एंड प्लूरिलैटरल एस्पेक्ट इन इट।
जापान में भारत के राजदूत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत अमृतकाल की यात्रा के मध्य में है और ये यात्रा भारत को एक विकसित देश बनाने की है जिसमें विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा होगा। भारत की अमृतकाल यात्रा में जापान एक प्रमुख और विश्वसनीय भागीदार बना रहेगा। टोक्यो से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितम्बर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अर्जेंटीना ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने प्रवेश नियमों में ढील दी है। इससे अवैध अमरीकी पर्यटक वीजा धारकों को अर्जेंटीना की यात्रा के लिए अलग से वीजा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। निर्णय का स्वागत करते हुए भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दोनों देशों के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना और अधिक भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। थाईलैंड में चल रहे रक्षा प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन 2025 से अलग भारत के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वियतनाम, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के अनुसार बातचीत में रक्षा सहयोग को व्यापक बनाने, समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने, पेशेवर सैन्य आदान प्रदान को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी सहित साझेदारी के नए क्षेत्र तलाशने पर चर्चा हुई। सरकार ने कच्चे कपास के आयात पर कर छूट इस वर्ष 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे पहले सरकार ने कपास के आयात पर 19 अगस्त से 30 सितंबर तक अस्थायी कर छूट दी थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रामबन क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए कई भूस्खलनों के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आज लगातार तीसरे दिन यातायात के लिए बंद है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया है कि इस कारण विभिन्न स्थानों पर 600 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। जम्मू के नगरोटा से रियासी, चेनानी, पटनीटॉप, डोडा, रामबन, बनिहाल, श्रीनगर की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं है। सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी अवरोधों को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। किश्तवाड़ सिंतन अनंतनाग राजमार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। उधर हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और कई सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर रुक रुक कर जारी है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों ऊना, हमीरपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुल्लू जिला के बंजार और मनाली उपमंडल में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए आज भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 310 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 38 अभी भी लापता है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा है कि डेनमार्क के आंतरिक मामलों और ग्रीनलैंड में किसी भी तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। उनका ये बयान उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें कहा गया है कि व्हाइट हाउस से जुड़े अमेरिका के नागरिक ग्रीनलैंड में गुप्त गतिविधियों में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।